अहमेतं पुरुषं महंतं आदित्यवरणं तं सः परस्तात् तमेविदित्वाति मृत्युं नेतिः नान्यपन्था विद्यते नाय। अहम एतम पुरुषम वेदा, मैं इस पुरुष को जानूं जो मेरे शरीर में वर्तमान है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, इसका प्रकाश सूर्य की समान है, जैसे हमारे पृथ्वी मंडल को ये सूर्य प्रकाशित कर रहा है, ऐसे ये सूर्य के समान इस हमारे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। तमेविदित्वा, इस महानात्मा को ही जानकर अतिमृत्यु मेति मृत्यु पर विजय पाया जा सकता है। ना अन्य पंथा विद्यते नाय, और कोई ऐसा मार्ग नहीं है मौत को विजय पाने का। एतम पुरुषम शब्द आता है, परमात्मा के लिए भी इसका अर्थ होता है। अहम एतम पुरुषम वेदा, मैं इस ये जो प्रत्यक्ष मेरे सामने सर्वव्यापक भगवान है, मैं इस पुरुष को जान। आदित्य वर्णम तमसा प्रसाद, सारे ब्रह्मांड में सूर्य के समान प्रकाशमान है। तमेविदित्वा ही, इसको जान करके, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का ज्ञान करेंगे तो इसका भी ज्ञान होगा। ब्रह्मांड का ज्ञान होने से हमें अपने शरीर, हमारा शरीर भी ब्रह्मांड में आ जाता, तो उसको जान करके ही मौत पर विजय पाया जा सकता है। या इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है मौत पर विजय पाने का। कई दिन से इस स्थूल शरीर के विज्ञान की बात चल रही थी, तो आज कुछ सूक्ष्म विषय के, सूक्ष्म शरीर के विषय में कहेंगे। आप रोज मस्तिष्क में ध्यान करते हैं तो, क्योंकि अगर सूक्ष्म शरीर की सत्ता को हम भिन्न मानते हैं, तो उसके पदार्थों को जिनको उपभोग करता है उनको भिन्न मानना पड़ेगा। तो पृथ्वी तत्व का, जिसका हम कल वर्णन कर रहे थे, जिससे हमारा शरीर की रचना हुई है और 10 प्रकार के पार्थिव अंश शरीर में वर्तमान वर्णन किए थे, तो इसे पृथ्वी का सूक्ष्म रूप जब हम खोज करते हैं, ढूंढते हैं इसका उपादान कारण, तो गंध तन मात्रा है। अभ्यास काल में जिस वक्त आपकी दृष्टि ज्योतियों पोतियों की बात जाने, तो ये तो ऐसे ही, क्योंकि बहुत ज्योति इकट्ठी हो जाती है, भ्रांति सी हो जाती है, यही नहीं पता लग पाता अभ्यासियों को ये किसकी ज्योति है। या तो ये पता हो जाए कि जैसे हम दूर देश में गंध पड़ी है तन मात्रा की, उसको स्मरण कर करके, अगर उसके दूर देश के प्रभाव से, वैसे तो गंध यहाँ भी वर्तमान है, सर्वत्र गंध वर्तमान है, फूल कोई थोड़ी दूर नहीं, मेरे आगे पीछे हैं, ये भी गंध युक्त है, तो इनको गंध को ध्यान की दृष्टि का विषय बना करके और उसको स्मरण किया जाए गंध को, और देखा जाए कि इस गंध का प्रभाव मस्तिष्क के किस देश में पड़ता है, कौन सा स्थान इसका अंदर इस मस्तिष्क में है कि जहां इस गंध का प्रभाव पड़ता है। आया के कोई इस प्रकार की कोई वो प्रकाश आत्मक चीज है, नासिका जो इंद्रिय है, इस प्रकार की कोई चीज है प्रकाशात्मक है, उस पर गंध का प्रभाव पड़ता है, या जैसे ये गंध है, गंध का रूप तो आपको देखने में नहीं आता, केवल खुशबू नाक बतला देता है, पर गंध का रूप भी तो होना चाहिए ना। जब कोई पदार्थ है तो उसका रूप तो होना चाहिए ना, और नव ज्ञान का विषय कैसे बनेगा। तो इस सूक्ष्म गंध का, तन मात्रा का, आपके मस्तिष्क में किस देश पर प्रभाव पड़ता है, आया के कोई ये इसका ही भाग, इसका ही सेंटर, इसके मध्य भाग में कोई ये स्थूल शरीर का ही अंश है, जैसे लोग बुद्धि का मानते हैं या सेंटर, तो छोटी छोटी खाइए सी वहाँ है तरल से भाग के ऊपर में, तो वहाँ जब ये शब्द वगैरह जाते संवेदन जाते हैं तो वहाँ पूरा विज्ञान पैदा होता है। तो इन्होंने तो गया इस फिजिकल शरीर में ही माना है इसको। परंतु हमारे लोग ये कहते हैं कि इससे भिन्न, क्योंकि लोग तो पुनर्जन्म की बात मानते नहीं, दूसरे शरीर की बात मानते नहीं, इसलिए इनके यहाँ तो सूक्ष्म शरीर सिद्ध नहीं होता। पर हम लोग क्योंकि मानते हैं तो कौन सा आया कि वो प्रकाश के रूप में वो तुम्हारी नासिका इंद्रिय वहाँ वर्तमान है, या कोई इस स्थूल शरीर के किसी देश विशेष में स्थान विशेष में वहाँ गंध का स्पर्श हुआ है, या नासिका से यहाँ चल करके ज्ञान वाहक तंतु इस मस्तिष्क में बुद्धि के पास पहुँचे हुए हैं, आया के बुद्धि ही इंद्रियों का काम करती है, या वो इंद्रिय नाम की कोई और भिन्न सत्ता है यहाँ इस मस्तिष्क के अंदर, तो इसकी खोज करनी चाहिए। क्योंकि जब आप ये देखा गया है, हम पहले युवा अवस्था में बहुत अभ्यास किया करते, किसी पार्क में हम गए, देखा कि ये फूल इसकी गंध मुझे यहाँ तक आ रही है इतनी दूर, तो उस गंध वो क्योंकि गुलाब के फूल पांच पांच सात सात दिन खिले रह जाते अगर उनको तोड़ा ताड़ा ना जाए। अब मैं क्या करता था, अब देखता था ध्यान से कितनी दूर मुझे गंध आ रही है, तो रोज मैं थोड़ा थोड़ा एक एक फुट पीछे हटना शुरू कर देता था। आसन को मैदान था पीछे घास का, ये कलकत्ते में भी अभ्यास करता रहा, हार में अमृतसर में भी करता रहा कंपनी बाग में, तो एक फुट आज पीछे हट गया स्कूल से, ध्यान से उसको आकर्षण किया, कुछ दूर होती थी कुछ ध्यान उसको आकर्षण कर लेता था, फिर दूसरे दिन और एक फुट पीछे हो गया, फिर तीसरे दिन और एक फुट पीछे, तो उसको ध्यान बल से मनोबल से आकर्षण करता रहता था, और ये प्रतीत हो रहा था कि जैसे इतनी दूर फूल होते हुए भी मुझे यहाँ गंध आ रही है। तो इसी प्रकार अगर और पीछे हटता चला जाता था तो बहुत दूर तक ये देखा कि 30-40 फुट तक भी खींचने की बात बनती थी वो, और फिर उसका ही अभ्यास नहीं सेंट का भी अभ्यास करता रहा। तो एक बिंदु सेंट एक रुई के फोए पर लगाकर इतनी दूर रख दिया, और आज उसको मैंने अभ्यास का विषय बनाया, और कल फिर उतना ही एक बिंदु सेंट उस पर लगा दिया और एक हाथ पीछे हो गया। तो इसी तरह एक एक बिंदु लगा लगा करके बहुत दूर तक उस गंध को आकर्षण करने की योग्यता पैदा हो गई, और फिर यहाँ तक प्रतीत होने लगा करता था कि जैसे वहाँ पार्क है, वहाँ पार्क के फूल को स्मरण कर करके गंध का संबंध बना करके तो यहाँ भी गंध की अनुभूति होने लगती थी। तो इस प्रकार का अभ्यास करने से भी वह सूक्ष्म इंद्रिय जो होती है ये दूर देश से भी पदार्थों को आकर्षण कर लेती है, ऐसे शब्द का भी कर लेती है। जैसे कोई मध्यम सा शब्द साउंड आप किसी बाजे का जो लगातार एक ही जिसमें शब्द रहता हो तारतम्य रूप से, उसमें उच्च स्वरना और नीचा स्वरना बनता हो, तो उसको कान का विषय बना करके आप आज इतनी दूर बैठो कि जितनी दूर वो सुन रहा हो आप, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ध्यान का विषय बना करके और रोज एक एक गज दो दो गज पीछे बढ़ते चले जाओ, तो इसी तरह आप बहुत दूर तक भी उस शब्द के सुनने की योग्यता बन जाती थी। तो साधना की अवस्था में इस प्रकार के मैं अभ्यास बहुत करता रहता था, तो दूर देश से भी शब्द की बातें सुनने में आ जाती थी, दूर देश से भी शब्द का अर्थ का पता लग जाता था, ऐसे ही रूप के विषय में भी अभ्यास किया करता था। अब जैसे आपकी शक्ल को मैंने देखा हुआ है, अब आप दूर देश में मेरे से रह रहे हैं, आपकी शक्ल को याद कर करके या अपने मनोबल से आपके मन को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करना दूर देश में, और अपने अनुकूल चलाने की बात करना, और बल्कि यहाँ भी कह दिया करता था मैं अभ्यासियों को कि तुम नोट करते रहना जो तुम्हें अनुभव हो। तो मैं भी यहाँ से जो संदेश भेजता था दूर देश में, मैं भी नोट कर लेता था उसके। तो नोट है जो भावना, जो शब्द है या जो विचारधारा में भेजा करता था, वहां उसके मस्तिष्क में वैसे ही भावनाएं पैदा होने लगती थी, वो भी वही शब्द लिखलाता था। कोई 19-20 का अंतर होता था किसी किसी दिन। तो इस प्रकार का अभ्यास करने से दूर देश के साथ भी संबंध बना करके इंद्रियों का, तो दूर देश से भी रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है किया जा सकता है। सामने स्पर्श तो होता है, दूर देश से भी स्पर्श किया जा सकता है, दूर देश से भी रूप को देखा जा सकता है, दूर देश से भी इसको दिव्य श्रवण आदि शब्द आते हैं योग दर्शन में, इस प्रकार की सिद्धियां आती है। तो ये प्रथम भूमिकाएं थी इस प्रकार की सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए। तो फिर अभ्यासी दूर देश में भी बैठ करके केवल संकल्प मात्र से, स्मरण मात्र से ही पदार्थ को तब्दील करना या वहां का ज्ञान ग्रहण कर लेना, या जैसे भूमिशु उन्मज्जति भूमि में प्रवेश करना, कहाँ कहाँ इसमें कौन कौन से धातु हैं, कहाँ इसमें गैस है, कहाँ इसमें तांबा है, कहाँ इसमें लोहा है, इस प्रकार के अभ्यासों का भी वह करता रहा साधना। तो ऐसे अनुभूति उस काल की ये बातें थी सब। तो जब तक है योगी की बुद्धि इस प्रकार की नहीं हो जाती, तब तक ठीक आत्मा के दर्शन की बात बनती है, क्योंकि ये विज्ञान तो उससे बहुत स्थूल है। ये परमात्मा तो इस सारे ब्रह्मांड के, पृथ्वी आदि के अंतिम छोर में ही तो तुमको मिलेगा। जब तुम व्यापकता सूक्ष्मता के नाते से भगवान के पास जाओगे, तो पहले पहले तो स्थूल ही पदार्थ आएंगे। तुम्हारा आत्मा भी इतना सूक्ष्म है शरीर के अंदर, जब इसके जाओगे तुम इसके पास में, पहले तो स्थूल शरीर का कवर ही तो तुम्हारे सामने आएगा, फिर सूक्ष्म शरीर का कवर उसके सामने आएगा, फिर कारण शरीर का, कारण शरीर के गर्भ में जाकर तुम्हें आत्मा मिलेगी। तो इसी प्रकार है, जैसे तुम्हारी दिव्य दृष्टि सूक्ष्म शरीर को भेदन करके कारण शरीर तक पहुंचने की सामर्थ्य हो जाती है, जब इस प्रकार की बुद्धि योगी की बन जाती है, तब जा करके फिर उसकी आत्म दर्शन की योग्यता बन जाती है। सर्वसाधारण की ये तो ऐसे प्रकाश कई किस्म के क्या प्रमाण है, तुमने आत्मा का ही प्रकाश देख लिया, बुद्धि का ही प्रकाश देख लिया, या तो तुम्हारा इतना विज्ञान हो सबके, ठीक है प्रकाशमान है पदार्थ, पर सबके रूपों कार, जैसे अब सितारा भी चंद्रमा भी निकलावा और भी चीज, दीपक भी जल रहे, लैंप भी जल रहे हैं, अब प्रकाश तो भिन्न भिन्न है। तो हम जिस प्रकाश की तरफ दृष्टि डालते हैं, वो उसका दीपक का वैसे दीपक भी नजर आ जाएगा, उसका प्रकाश भी नजर आ जाएगा, दूसरे पदार्थ भी नजर आएंगे। तो ऐसे तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर तुम जो रोज प्रकाश की बात, आ मुझे लाइट आ गई, मुझे ज्योति, किसकी ज्योति आई, क्या काम उसने करा, ज्योति तो ये पहले आंखें बाप को दिखा रही है, ऐसे कर लूंगा तो देखने की शक्ति यहाँ ऐसे ऐसे करने लगे, उसको तुम ज्योति मान बैठे हो, आज तक कुछ बनाया नहीं उस ज्योति से। या तो ज्योति को मोड़ दो अंदर, शरीर की तरफ घुमा दो, ताकि शरीर की रचना को दिखाने लगे। जब बाहर आपके शरीर की रचना दिखा रही है ये ज्योति, यहां से निकल करके अंदर बंद कर दोगे तो अंदर क्यों ना दिखावेगे। तो ये है विज्ञान की बातें अभ्यास की, जो तुम्हारे करने वाली हैं। उपदेश सुनते सुनते तो सारी जिंदगी होगी, पर करने में भी, प्रत्यक्ष में भी तो अनुभूति होनी चाहिए बातों की, इन पदार्थों की। इस गंध का अभ्यास एक बार कई मास कलकत्ते में, वहां का कंपनी बाग है चंपाल घाट की तरफ है, सर मैं शहर में ठहरा हुआ था साधना के लिए, वहां इतना एकांत नहीं था।
एक मिनट बना दी, इन्होंने कहा है कि हमारे
होने लगती है। तो मेरी तो उस वक्त है, मुझे तो अनुभव, मैं कई महीने 4-5 महीने वहां साधना करता रहा। तो एक जोड़ा वहां, एक मारवाड़ी ने कोई देवी रखी हुई थी, वो किसी अच्छे राजघराने की थी, विधवा हो गई थी छोटी उम्र में, वहां से उसको निकाल लाया और उस मारवाड़ी ने वहां जगन्नाथ बाजार में अपने लिए रख छोड़ी। कभी कभी उसके पास आता जाता था, उसको खर्चा पर्चा दे दिया था दोनों। तो एक दिन मैं वहां बैठ करके ऐसे साधना रोज किया करता था, तो वो देवी कहती है कुछ, मैं जागृत सी अवस्था में था कि जैसे देखो हम कैसे पाप आत्मा है, हम तो अपने लिए दुराचार के लिए एकांत ढूंढते फिरते हैं, और ये महात्मा अपने भगवान के मिलन के लिए एकांत ढूंढता फिरता है। कि कहाँ से छोड़ के आया हुआ, ये रोज यहाँ बैठते इसको देखते थे, और ये कब जाता है कि कब आता है ये हमको पता नहीं। तो मैं 8-8, 10-10 घंटे सवेरे थोड़ा सा दूध पी करके आ जाया करता था, और शाम के वहाँ समझो 6-6 बजे तक बैठा रहता था, बड़ी साधना करता था। तो उसने क्या षड्यंत्र रचा, तो अपनी नौकरानियों को मेरे पीछे लगाया कि देखो ये महात्मा कहाँ रहता है और कहाँ कहाँ ये जाता है। तो एक दिन मैं जगन्नाथ बाजार से जा रहा था, सायंकाल को आ रहा था उधर से घूम करके, तो उसने एक नौकरानी गई, हमारी रानी साहबा आपको याद कर रही हैं, आपके दर्शन करना चाहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, बाहर निकलती हैं। भाई मैं तो ऐसे स्त्रियों के पास में एकांत में अकेले नहीं जाता हूँ, मैं उसको जरूरत है तो ये मेरा पता वहां के मिल ले। खैर फिर कुछ दिन बीत गए, फिर वो वहीं मेरा भी रास्ता उधर से था, फिर वो कहने लगी कि महाराज आप कृपा करो, आप तो संत महात्मा दयालु होते, हम शास्त्र में पढ़ा करते थे स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवोपि न जाता जाना कुतो मनुष्य। तो स्त्रियों के चरित्र को कहते मनुष्य तो क्या भगवान भी नहीं जानता। तो उसने क्या उस नौकरानी को मेरे पीछे लगाए रखा, आखिर मैं भी तंग आ गया, रोज ये मेरे दरवाजे यहाँ के खड़ी हो जाती है रास्ते में, और ये चलो आज चल ही पड़ता हूँ। तो मैं वहाँ चला गया उसके साथ में, तो दो कमरे थे वहाँ, एक मंदिर का कमरा था, तीसरा एक रसोई थी, और दो और थे, एक बड़ा मकान वहाँ था। तो मुझे वो ले जा करके वहाँ उस मंदिर में आसन वासन बिछा करके बैठा दिया। तो मैंने वो दरवाजा बंद कर करके कुंडी लगा के बाहर चली गई नौकरानी। तो अब तब तक वो जो देवी थी वो अपने श्रृंगार प्रंगार में लगी हुई थी, मैं खूब सज धज के महात्मा के पास जाऊंगी। तो खैर वो आई बड़ी मुस्कराती ही, जैसे मेरे बाप दादे की वाकिफ हो, ऐसी बातें बातें करने लगी बहुत। उसके हाव भाव को देख करके मुझे भी संदेह शंका होने लगी, भाई मैं तो यहाँ फंस गया, इसका तो चरित्र मुझे अच्छा नहीं मालूम होता है। खैर जी पता नहीं, मैं अब मैं बाहर जाने लगा वहां से उठ करके, तो बाहर का दरवाजा बंद था, नौकरानी दरवाजा, हम दोनों को ही अंदर छोड़ गई वो बाहर का दरवाजा। तो मैं शर्मिंदा होकर लज्जित होकर के फिर उस मंदिर में आन बैठा। फिर मैं अंदर बैठ करके बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना करी भगवान से, परमात्मा तू अंतर्यामी है, तू अपने भक्तों पर सदा दया करने वाला है। बड़ी भावना सी पैदा हुई और बड़ा मेरी आंखों से भक्ति का कुछ प्रेम का कुछ आंसू बहने लगी, बहते बहते मेरी समाधि सी लग गई। मैं सायंकाल को वहां समझो कोई लगभग 6-7 बजे बैठा था, 10 बजे तक मुझे कुछ पता नहीं रहा। अब उसकी क्या गति हुई पीछे मुझे तो पता नहीं, पर वो पहले तो वो मैंने कह दिया उसको मैं संध्या में बैठता हूँ, तो मैं तो संध्या में वो है संध्या थी मेरी, तो मैं तो प्रार्थना करते करते मेरा तो ऐसी समाधि लगी मुझे पता ही नहीं रहा। अब वो इतनी परेशान रही पीछे, ओहो मैंने बड़ी गलती करी, ऐसे महात्मा को मैं अपने चंगुल में फंसाया, ऐसे योगी को मैं पकड़ लाई, ये करा दिया। वो अपने पापों पर बड़ा पश्चाताप करने लगी, बड़ी घृणा सी उसको अपने जीवन से हुई, और मुझे कुछ पता नहीं। तो अगले दिन जब 10 बजे तो 10 बजे वो जो मारवाड़ी था वो भी आया हुआ वहां इकट्ठा, और दोनों नौकरानी भी, और मेरी जब वो समाधि सी खुली तो मुझे समझ में ना आए मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या हुआ, ये कौन है, कैसे है। मैं भी बहुत देर तक भ्रांत सा रहा, फिर बहुत स्मरण वगैरह कर करा करके क्या नाम, अब वो कहने लगी बस आज मेरे पाप कर्मों का विनाश हो गया, अब मैं ये दुराचार का जीवन व्यतीत नहीं करूंगी। मेरे जीवन का मेरी समाधि का उस पर इतना प्रभाव पड़ा, उसका साफ जेवर पेवर ला करके उस चौक के अंदर उसने इकट्ठा कर दिया, जितने उसके कपड़े पपड़े पड़े हुए थे बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ियां वाड़ियां सब ढेर लगा दिए, और एक मोटी सी रद्दी खद्दर की नौकरानियों की जो एक धोती थी वो धोती बांध करके कहने लगी कि आज मेरा और तेरा संबंध खत्म। मुझे बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो खैर उसके कहने पर वो कहने लगी कि क्या नाम, मैं तो इस महाराज के साथ ही जाऊंगी, जहां ये जाएंगे, जहां ये ले जाएंगे, जहां फेंकेंगे कुएं में, खड्डे में, कुछ में, अब मैं तेरे सात दुराचार का जीवन व्यतीत, बड़ी मुसीबत सीने में फंसा। फिर मैंने सोचा कि मैं कि अच्छा देवी, अगर तुम मेरे साथ ही चलना चाहते हो चलो, मैं तुमको नदिया शांति नवदीप ले चलता, वहां तुम्हारे लिए मैं प्रबंध करूंगा, व्यवस्था करूंगा। तो मैं उसको वहां से ले करके, उसने सारा धन दौलत, उसका रुपया पैसा बहुत कई हजार था, वो भी सब छोड़ कुछ नहीं लिया, एक धोती बांध करके एक जंपल साधारण सर मेरे साथ चल। अब वो भी बेचारा रोता रोता हमारे साथ चल दिया कि मैं कहां जाऊंगा। तो आखिर को वहां जा करके हम, मैंने तो वहां आगे भी नदिया शांति जाया करता था, तो उसकी व्यवस्था। अब कहने लगी कि अब मैं पाप का अन्न नहीं खाऊंगी, मैं अपनी कमाई का अन्न खाऊंगी। उन दिनों में चरखे का बड़ा जोर था गांधी का, एक चरखा ला करके दिया, कुछ हमने उसको सूत वो चीजें ला करके दी और उसका प्रबंध कर दिया कि ये सूत काथा करेगी इसके पैसे, 6 पैसे 8 पैसे का सूत मुश्किल से काटती थी और उसकी वो रोटी राटी लेती थी खाती थी। 6 साल उसने वहां तपस्या करी, कठिन साधना करी, वह इतना प्रभाव उसके जीवन पर मेरे जीवन का पड़ा। बस वो चरखा काट काट करके डेढ़ आने की रोज रोटी खा खा करके एक घास की झोंपड़ी गंगा के किनारे बना के कठिन तपस्या करी। तो कहने का तात्पर्य यह है भी जब जीवन में परिवर्तन हो जाता है, अब वो कह रहा था ना स्त्री चरित्रम देवो किल जानाति, क्या वो भावना लेकर के जब कुछ पुण्य कर्मों का उदय होने वाला आता है तब वो सब मूर्छित होकर के इकट्ठे आ जाते हैं। मां वो कोई निमित्त ढूंढा करते हैं, पाप कर्म भी विनाश होने के लिए कोई निमित्त ढूंढा करते हैं और पुण्य कर्म भी निमित्त ढूंढा करते हैं फल देने के लिए। जब कोई ऐसा निमित्त मिल जाता है तो फिर इकट्ठे पुण्य कर्म सम्मूर्छित होकर के फल का हेतु बन जाया करते हैं। तो मुझे तो वहां उस गंध पर अभ्यास करने का, इतनी अभ्यास की मुझे प्रैक्टिस ही हो गई थी कि बहुत बहुत दूर से 50-50, 100-100 गज से भी मैं गुलाब के बूटे से गंध को आकर्षण कर लेता था। और मुझे ये अब चाहे ये स्मरण का हो चाहे भ्रांति का हो, पर मैं तो प्रत्यक्ष अनुभव में करता था। भ्रांति को दूर करने के लिए इनको 10 ग्राम सेंट लाना चाहिए और उसमें से एक बूंद ये किसी एक रुई पर लगा करके सामने ये रख करके प्रैक्टिस करें और रोज थोड़ा थोड़ा पीछे हटते चले जाए। अब ये इसको प्रत्यक्ष करके स्वयं देख लें, फिर ये बतलाएं कि ये स्मृति जन्य ज्ञान होगा कि ये तुम्हारे मनोबल का या इंद्रिय के आकर्षण का ज्ञान होगा। देख करें और फिर कहें। से हाथ मारता था और जो गंध आप कहो ऐसे सुंगा देता था अपने हाथ में लेकर के। अब बतलाओ ये क्या था। हम लोग भी पढ़े लिखे थे, सब समझदार थे और बहुत आदमियों को जब हम कहते थे वो दिखा देता था। अब ये क्या था इनसे पूछो।